ये आकाशवाणी है, अब आप अरुण कुमार से समाचार सुनिए। संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है, जिसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। विधेयक को उच्च सदन ने मंजूरी दे दी, जिसके पक्ष में 128 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि 95 सदस्यों ने विधेयक के खिलाफ मतदान किया। राज्यसभा ने विधेयक पर करीब 12 घंटे तक चर्चा की। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है।
हम चाहते हैं कि सबको डिसीजन मेकिंग का बॉडी में जगह मिलना चाहिए, इसलिए सबको एम्पावरमेंट कर रहे हैं। एफिशिएंसी को हम इंक्रीज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का भरपूर इसमें प्रावधान किया गया है। अब सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा, डिजिटल पोर्टल होगा, जो सारा स्टेट बोर्ड के साथ में लिंक होगा, लाइव होगा। वर्क प्रॉपर्टी का कंटिन्यूअसली रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग, कंप्लायंस पूरा व्यवस्था करके हमने एफिशिएंसी को टारगेट दिया है।
वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है, जिसमें विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधान हैं। इस विधेयक का उद्देश्य संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाकर वक्फ बोर्ड और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करके और हितधारकों के अधिकारों की रक्षा करके शासन में सुधार करना भी है। विधेयक मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना भी चाहता है। विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड को और अधिक समावेशी बनाना है, जिसमें बेहतर वक्फ प्रशासन और निर्णय लेने के लिए विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों का प्रतिनिधित्व हो। वक्फ संशोधन वक्फ प्रशासन के लिए एक धर्मनिरपेक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली स्थापित करता है। जांच और संतुलन शुरू करके हितधारकों को सशक्त बनाकर और शासन में सुधार करके विधेयक भारत में वक्फ प्रशासन के लिए एक प्रगतिशील और निष्पक्ष ढांचा तैयार करता है। संसद ने विमानन वस्तु में हितों की सुरक्षा विधेयक 2025 पारित कर दिया है। विधेयक विमानन वस्तु में हितों की सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। ये मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन और विमानन उपकरण से संबंधित मामलों पर मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन के प्रोटोकॉल को लागू करने का भी प्रयास करता है, जिन पर 2001 में केप टाउन में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और थाईलैंड ने सूचना प्रौद्योगिकी, समुद्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, हस्तशिल्प और हस्तकरघा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 6 समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंग तारन शिनावात्रा के बीच बैंकॉक में द्विपक्षीय वार्ता के बाद ये समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। थाईलैंड सरकार ने भी श्री मोदी जी की यात्रा के अवसर पर 18वीं शताब्दी के रामायण भित्ति चित्रों को दर्शाते हुए एक विशेष डाक टिकट जारी किया। श्री मोदी को थाईलैंड की प्रधानमंत्री ने पाली में बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक का एक विशेष संस्करण भी भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात से लाए गए भगवान बुद्ध के अवशेषों को थाईलैंड भेजने की पेशकश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के बैंकॉक में थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने श्री शिनावात्रा के साथ अपनी मुलाकात को सुखद बताया। श्री मोदी ने कहा कि श्री शिनावात्रा को शासन और नीति निर्माण से संबंधित मामलों का व्यापक अनुभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज से शुरू हो रहे श्रीलंका दौरे के दौरान उद्घाटित होने वाले स्मारक पट्टिकाओं पर श्रीलंका भारत को भारत गणराज्य के रूप में संदर्भित करेगा। श्रीलंकाई मीडिया ने बताया कि भारत द्वारा सहायता प्राप्त 3 परियोजनाओं के लिए स्मारक पट्टिकाओं का अनावरण किया जाएगा, जिसमें सामपुर और ऊर्जा परियोजना की आधारशिला, दांबुला में एक कूल स्टोरेज कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन और 5,000 धार्मिक पूजा स्थलों पर 5,000 रूफटॉप सोलर पैनल की कमिशनिंग शामिल है। बिहार में चैती छठ पूजा के तीसरे दिन कल शाम श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया। आज सुबह उगते सूर्य को दूसरा अर्घ देने के साथ ही छठ पूजा का समापन हो जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रनों से हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा रखे गए 201 रनों के विजय लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद 16 ओवर और 4 गेंदों में 120 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।